मतलब एक घर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा घर जहां छत से लगातार पानी टपक रहा है।
और हाँ, अंदर जो इंसान बैठा है वो बस दिन भर बाल्टियां भर भर कर पानी बाहर फेंकने में लगा है।
बिल्कुल, सुबह से शाम तक बस यही चल रहा है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसका पूरा ध्यान बस उस पानी को पोंछने में जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या वो टपकती हुई छत है।
लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है ना।
हाँ, अचानक एक दिन उसे एहसास होता है कि असली सैलाब बाहर की बारिश या छत से नहीं आ रहा है, बल्कि उसी के घर के नींव में दबे एक टूटे हुए पाइप से आ रहा है। और जब तक वो अंदर का पाइप ठीक नहीं होगा,
तब तक चाहे वो कितनी भी बाल्टियां बदल ले, पानी कभी रुकने वाला नहीं है।
सही बात है।
एकदम सही।
और आज के इस गहन विश्लेषण में हम डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट के बुक ऑफ यशाया पर दिए गए लेक्चर्स पर जो चर्चा कर रहे हैं, वो ठीक इसी इसी टूटे हुए पाइप की बात करते हैं।
हाँ, विशेष रूप से अध्याय 49 से 51 तक के जो नोट्स हैं वो इसी पर केंद्रित हैं।
राइट। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि प्राचीन धार्मिक किताबें थोड़ी उबाऊ हो सकती हैं, लेकिन जब आप इनके भीतर के प्लॉट ट्विस्ट को समझते हैं तो ये किसी बेहतरीन थ्रिलर से कम नहीं लगती। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे ये ग्रंथ केवल बाहरी आज़ादी से आगे बढ़कर इंसान की आंतरिक आज़ादी की ओर मुड़ता है।
और इस स्रोत सामग्री की सबसे खास बात यही है कि ये सिर्फ क्या हुआ ये नहीं बताती, ये हमें बताती है कि क्यों हुआ और आज की दुनिया से, हमारे आज के मनोविज्ञान से इसका क्या नाता है। डॉक्टर ओसवाल्ट बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से इसके डॉट्स कनेक्ट करते हैं।
तो चलिए इस प्लॉट ट्विस्ट से ही शुरू करते हैं
जी,
क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है।
बहुत दिलचस्प है, और ये प्लॉट ट्विस्ट इतना सूक्ष्म है कि अगर कोई टेक्स्ट को सतही तौर पर पढ़े तो वो पूरी तरह से इसे मिस कर सकता है। मैं समझाता हूँ कैसे।
हाँ प्लीज।
डॉक्टर ओसवाल्ट बताते हैं कि यशाया के जो शुरुआती अध्याय हैं, यानी 41 से 48 तक, उनमें लगातार बेबीलोन का जिक्र है। उस भौगोलिक और राजनीतिक निर्वासन की बात बार बार होती है। लोगों को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या बस वही है,
वह एक टपकती हुई छत।
एग्जैक्टली, बेबीलोन ही वो टपकती हुई छत है। लेकिन जैसे ही ये ग्रंथ अध्याय 49 में प्रवेश करता है, एक बहुत अजीब घटना होती है। बेबीलोन शब्द पूरी तरह से गायब हो जाता है।
एक सेकंड, गायब हो जाता है मतलब एक बार भी उसका जिक्र नहीं होता?
एक बार भी नहीं। सोचिए, जो चीज अभी तक सबसे बड़ी समस्या थी उसका नाम ही गायब हो गया।
ओ वाओ, तो आजादी की बात भी बंद हो जाती है क्या?
नहीं, आजादी की बात अभी भी चल रही है, लेकिन अब फोकस बदल गया है। अब आजादी किसी बाहरी देश या दुश्मन से नहीं है, अब वो टूटा हुआ पाइप सामने आ रहा है।
यानी इंसान के अपने पाप, उसकी आंतरिक कमजोरियां और जिस वजह से ईश्वर से उसकी दूरी बन गई है, वो अब असली समस्या है।
हाँ, डॉक्टर ओसवाल्ट इसे बहुत ही तार्किक नजरिए से समझाते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि अचानक से ये फोकस भौगोलिक आजादी से आंतरिक आजादी पर शिफ्ट क्यों हो गया,
तो इसका कारण क्या बताते हैं वो? क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो बस आजादी दे सकता था।
यही तो पॉइंट है। डॉक्टर ओसवाल्ट के लेक्चर्स में कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव वाले ब्रह्मांड के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को कुछ अटल नैतिक नियमों के साथ बनाया है।
जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम।
बिल्कुल, अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो आप गिरेंगे ही, और नैतिक व्यवस्था भी वैसी ही ठोस है। अगर लोग लगातार गलतियां कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो उसका एक प्रभाव होगा ही। ईश्वर केवल जादू की छड़ी घुमाकर ये नहीं कह सकता कि चलो मैंने तुम्हारे सारे पाप अनदेखे कर दिए,
क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो न्याय की पूरी अवधारणा ही ध्वस्त हो जाएगी। राइट।
तो एकदम सही, ब्रह्मांड का नैतिक ढांचा ही गिर जाएगा। इसलिए उन्हें केवल बेबीलोन से निकालकर वापस उनके देश में बसा देना काफी नहीं था, अगर उन्होंने अपने अंदर की उस बुराई को नहीं सुलझाया जिसने उन्हें कैद तक पहुंचाया था,
तो वे फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। मतलब केवल जगह बदलने से इंसान की फितरत नहीं बदल जाती। बेबीलोन से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो बेबीलोन बस गया है उसका क्या?
हाँ, और यहीं से उस टूटे हुए पाइप को ठीक करने वाले की एंट्री होती है। लेक्चर्स में इसे आदर्श सेवक की पहेली कहा गया है।
पर यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसने मुझे नोट्स पढ़ते वक्त बहुत परेशान किया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी।
हाँ पूछिए।
अध्याय 49 में ईश्वर एक सेवक को बुलाता है और उसे इज़राइल कहकर संबोधित करता है, लेकिन अगर हम टेक्स्ट के इतिहास को देखें तो ये राष्ट्र तो पूरी तरह से विफल हो चुका था ना।
हाँ बिल्कुल, अध्याय 42 में ही इस राष्ट्र की हालत का बहुत स्पष्ट वर्णन है। वहाँ उन्हें एक अंधा, बहरा और लूटा हुआ राष्ट्र कहा गया है।
तो फिर ये तार्किक रूप से संभव ही नहीं है। मतलब एक अंधा राष्ट्र खुद को या दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है?
सही सवाल है।
डॉक्टर ऑसवाल्ट यहाँ तर्क देते हैं कि यह सेवक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श इसराइल है, यानी मसीहा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम टेक्स्ट के नजरिए से इसे चुनौती देना चाहूंगी।
बिल्कुल बताइए।
अगर किताब में साफ साफ तुम मेरे सेवक इसराइल हो लिखा है, तो हम अपनी मर्जी से उस नाम को किसी एक व्यक्ति या मसीहा में कैसे बदल सकते हैं? क्या यह टेक्स्ट के मूल अर्थ को जबरदस्ती मोड़ना नहीं है?
ये बहुत ही वाजिब क्रिटिक है और सदियों से ये सवाल पूछा जाता रहा है, लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ट इसका बहुत सटीक उत्तर देते हैं। वे इसे सिनोनिमस पैरेललिज्म या समानार्थक समानांतरवाद की अवधारणा से समझाते हैं।
हिब्रू साहित्य की संरचना के आधार पर?
हाँ, प्राचीन हिब्रू कविताओं में अक्सर ऐसा होता है कि एक नाम पूरे समूह के आदर्श को या उस समूह के अंतिम उद्देश्य को प्रस्तुत करता है।
जैसे?
कोई उदाहरण है इसका? जैसे आज हम न्यूज में सुनते हैं ना कि व्हाइट हाउस ने ये फैसला लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमारत कोई फैसला ले रही है।
अरे हाँ, वो तो बस उस सत्ता और उस देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि की ओर इशारा कर रहा है।
एग्जैक्टली। तो यहाँ इसराइल नाम उस राष्ट्र की भौगोलिक हकीकत का नहीं, बल्कि उसके उस उद्देश्य का प्रतीक है जिसे राष्ट्र पूरा नहीं कर पाया। वो व्यक्ति यानी मसीहा उस राष्ट्र का अंतिम प्रतिनिधि बनकर वो काम कर रहा है।
समझ गई। और मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि टेक्स्ट के भीतर ही होती है ना, अध्याय 50 की आयत 10 में।
बिल्कुल, वहाँ की भाषा बहुत चौंकाने वाली है। वहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति उस सेवक की आवाज़ सुनता है, वही व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का डर मानता है।
ये बहुत बड़ी बात है। एक सेवक की आवाज को ईश्वर की सत्ता के बराबर खड़ा कर दिया गया है।
हाँ, कोई भी विफल राष्ट्र या साधारण इंसान इस स्तर पर नहीं हो सकता। ये सेवक और ईश्वर एक ही धरातल से काम कर रहे हैं।
और इस सेवक का काम केवल उस एक राष्ट्र की समस्याओं को सुलझाना नहीं है। डॉक्टर ओसवाल्ट अध्याय 11 का भी तो संदर्भ लाते हैं, जहाँ मसीहा के मुंह को एक तीखी तलवार बताया गया है।
हाँ, जो सच्चाई और न्याय का प्रतीक है। अध्याय 49 में इसी सेवक के मुंह का वर्णन हूबहू वैसा ही है। मतलब ये प्रकाश केवल एक समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए है।
ओह वाओ। और इस पूरी प्रक्रिया में प्रकृति भी तो एक गवाह बनती है।
मुझे याद आ रहा है कि अध्याय 1 में जब राष्ट्र पाप में डूबा था, तो प्रकृति को एक जूरी की तरह बुलाया गया था।
बिल्कुल सही कहा।
गवाही देने के लिए कि देखो इन लोगों ने क्या किया है। लेकिन अब अध्याय 49 में जब इस आदर्श सेवक के द्वारा मुक्ति की योजना सामने आती है, तो वही प्रकृति खुशी से झूम उठती है।
पहाड़ और आसमान गा रहे हैं। ये सच में एक कॉस्मिक सेलिब्रेशन है।
हाँ, तो अब सोचिए, इतनी विशाल और ब्रह्मांडीय स्तर की आजादी सामने है, तो इंसान की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?
खुशी, उत्साह, कृतज्ञता।
स्वाभाविक रूप से यही होना चाहिए, लेकिन इंसान का मनोविज्ञान कुछ और ही काम करता है। अध्याय 49 की आयत 14 में लोगों का जवाब आता है, ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है, मुझे भुला दिया है।
उफ, ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। मतलब उनके सामने समाधान रखा है, आजादी है, लेकिन वे पूरी तरह से निराशा में डूबे हैं।
ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम उनके उस वक्त के मनोविज्ञान को समझें, तो ये बहुत स्वाभाविक था। वे निर्वासन में थे,
एक अनजान और ताकतवर साम्राज्य के बीच।
हाँ, और उनके भीतर एक बहुत ही गहरी सर्वाइवल एंग्जाइटी घर कर गई थी, अस्तित्व की चिंता। उन्हें डर था कि एक या दो पीढ़ी के बाद उनके बच्चे बेबीलोन के रंग में पूरी तरह रंग जाएंगे।
मतलब उनकी अपनी पहचान, उनकी भाषा, उनका वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा।
बिल्कुल, उन्हें लग रहा था कि इतिहास के पन्नों में उनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा।
और उस गहरी चिंता के बीच ईश्वर का जो जवाब आता है, मुझे लगता है वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे मार्मिक हिस्सा है।
हाँ, ईश्वर एक माँ का उदाहरण देते हैं। क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? शायद वो भूल भी जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा।
और उसके बाद का जो वाक्य है, मैंने तुम्हारी तस्वीरें अपनी हथेलियों पर उकेरी हैं, सच में रोंगटे खड़े कर देता है।
टैटू का रूपक। प्राचीन दुनिया में टैटू बनवाना बहुत ही दर्दनाक और गहरा प्रतीक होता था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे धोया जा सके।
और हथेलियां ही क्यों?
क्योंकि हथेलियां इंसान के शरीर का वो हिस्सा है जो हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता है। आप कुछ भी काम करें, आपकी नजर हथेलियों पर जाती ही है। ईश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारी पीड़ा मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकती।
और डॉक्टर ओसवाल्ट इस वादे के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी रोशनी डालते हैं ना, कि यहूदी लोग बेबीलोन में केवल 45 साल रहे।
हाँ, 586 से 539 ईसा पूर्व तक।
लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ट का नोट्स केवल उस समय तक सीमित नहीं रहता, वे पिछले 2000 सालों के इतिहास का एक बहुत ही तटस्थ अवलोकन पेश करते हैं। तानाशाही और क्रूरता वाला हिस्सा।
बिल्कुल, इतिहास में कई क्रूर तानाशाहों ने इस धर्म और संस्कृति को जड़ से मिटाने की कोशिश की। लेक्चर्स में अडोल्फ हिटलर, गोयल्स और गोरिंग का जिक्र आता है, जिन्होंने अपनी पूरी सैन्य ताकत इन्हें मिटाने में लगा दी।
उन्हें लगता था कि वे इतिहास को अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
हाँ, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वे तानाशाह खुद इतिहास के अंधकार में दफन हो गए, जबकि जिस समूह को वे मिटाना चाहते थे वो आज भी कायम है।
तो वो हथेलियों पर उकेरा गया नाम केवल एक कविता नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक यथार्थ था, और ये मुझे हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़ता है। कई बार कठिन समय में हम भी यही सोचते हैं कि बस सब खत्म हो गया, जबकि वास्तविकता में चीजें संरक्षित की जा रही होती हैं।
बिल्कुल सही, लेकिन इंसान की एक फितरत होती है, हमसे इंतजार नहीं होता। जब हमें लगता है कि हमारे आसपास बहुत गहरा अंधेरा है, तो हम अपने तरीके से समाधान निकालने लगते हैं।
हम अपनी छोटी छोटी मशालें जलाने लगते हैं, और यहीं से डॉक्टर ऑसवाल्ट अध्याय 50 की उस गंभीर चेतावनी की ओर बढ़ते हैं, अपनी खुद की आग जलाना।
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज की दुनिया पर बहुत सटीक बैठता है। लेक्चर्स में बताया गया है कि अंधेरे में लोग अपनी खुद की आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर चेतावनी देता है कि इसका अंत सिर्फ दर्द में होगा।
डॉक्टर ऑसवाल्ट ने यहाँ पॉल का उदाहरण भी तो दिया है।
हाँ, पॉल जो अपने समय के सबसे पढ़े लिखे और प्रभावशाली व्यक्ति थे, वे अपनी उसी ज्ञान और शक्ति की आग जलाकर चल रहे थे, ये मानते हुए कि वे सही रास्ते पर हैं।
लेकिन वो आग उन्हें शांति नहीं दे रही थी। इस खुद की आग जलाने वाले विचार पर मैं एक आधुनिक उदाहरण देना चाहूंगी।
हाँ, बताइए।
मान लीजिए कि कोई इंसान रात के समय एक बहुत ही घना अनजान जंगल में खो गया है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो घबराहट में वो अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकालता है और उसकी फ्लैशलाइट ऑन कर लेता है।
जो कि हम सब करते हैं।
उसे लगता है कि अब सब कंट्रोल में है।
लेकिन वो फ्लैशलाइट कितनी दूर तक दिखा सकती है? बस 2-4 कदम आगे तक। वो पूरे जंगल का नक्शा थोड़ी दे सकती है।
एग्जैक्टली, और सबसे भयानक हिस्सा तो इसके बाद आता है। कुछ घंटों तक भटकने के बाद उस स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने लगती है।
और जब वो बुझती है तब क्या?
तब स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब रोशनी जल रही थी तो इंसान की आंखें उस रोशनी की आदी हो चुकी थीं, तो जब वो बुझती है तो उसे आसपास का अंधेरा और भी ज्यादा डरावना लगता है। अपनी उपलब्धियों या अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा करना ठीक उसी फ्लैशलाइट की तरह है।
बहुत ही शानदार एनालॉजी है। ये कुछ समय के लिए हमारी चिंता कम कर सकता है, लेकिन जब ये आग बुझती है तो अंत केवल भटकाव में होता है।
और जब इंसान अपनी जलाई हुई आग से थक जाता है तब क्या होता है?
तब अध्याय 51 आता है। यही थके हुए लोग ईश्वर से चिल्लाकर कहते हैं, जागो, ईश्वर की भुजाओं जागो।
मतलब वे खुद अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ईश्वर सो रहा है।
इंसान के अहंकार की चरम सीमा। और ईश्वर का जवाब बहुत करारा है। ईश्वर कहते हैं, मुझे नहीं, यरूशलेम, तुम्हें जागने की जरूरत है। तुम अपनी जलाई हुई आग की चकाचौंध में उस असली रोशनी को देख ही नहीं पाए। और इसी भटकाव के बीच डॉक्टर ऑसवाल्ट लेक्चर्स के सबसे भारी रूपक पर आते हैं, क्रोध का प्याला।
कप ऑफ रैथ।
हाँ, प्राचीन समय में जब कोई राजा किसी राज्य को हराता था तो वो हारे हुए लोगों को एक प्याला पीने पर मजबूर करता था जिसमें जहर होता था।
ये उनके अपराधों का और न्याय का प्रतीक था।
बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट। डॉक्टर ऑसवाल्ट बताते हैं कि लोगों ने अपने पापों के कारण ईश्वर के क्रोध का प्याला भर लिया है और न्याय के अनुसार उन्हें इसे पीना है, लेकिन ईश्वर वादा करता है कि वो ये प्याला उनके हाथों से ले लेगा।
एक सेकेंड, रुको रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल क्रैश हो रहा है।
कैसा क्रैश?
अभी कुछ देर पहले ही हमने चर्चा की थी कि ईश्वर अपने ही बनाए हुए कॉज एंड इफेक्ट के नियम को नहीं तोड़ सकता। वो गुरुत्वाकर्षण की तरह अटल है, राइट?
हाँ, बिल्कुल।
तो अगर न्याय की मांग है कि सजा मिलनी चाहिए, तो ईश्वर बस जादुई तरीके से उस प्याले को गायब कैसे कर सकता है? क्या ये खुद न्याय के खिलाफ नहीं है?
ये इस पूरे विश्लेषण का, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। यहीं पर परम न्याय और परम करुणा एक दूसरे से टकराते हैं। डॉक्टर ऑसवाल्ट समझाते हैं कि ये प्याला गायब नहीं हुआ।
तो फिर क्या हुआ?
इसे किसी और ने पिया। इसका उत्तर गेत्सेमने के बाग में मिलता है।
ओह, गेत्सेमने का बाग, जहां मसीहा ने अपनी आखिरी रात बिताई थी।
हाँ, ईश्वर न्याय के नियम को नहीं तोड़ सकता था। प्याला तो पिया जाना था, इसलिए ईश्वर ने उस प्याले को इंसान के हाथों से तो ले लिया, लेकिन उसे जमीन पर नहीं फेंका।
उस आदर्श सेवक ने उसे लिया।
एग्जैक्टली। उस मसीहा ने खुद आगे बढ़कर उस पाप और क्रोध के प्याले को अपनी आखिरी बूंद तक पिया। गेत्सेमन के बाग में उनका जो अकल्पनीय दर्द था वो महज शारीरिक मृत्यु का डर नहीं था,
वो उस पूरे क्रोध के प्याले को पीने का डर था।
हाँ, ताकि न्याय भी पूरा हो और करुणा भी बनी रहे। मसीहा ने उसे पिया ताकि इंसानियत उस सजा से पूरी तरह आजाद हो सके।
वाओ, ये सचमुच विचारों को झकझोड़ देने वाला है। मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरे का बलिदान, ये उस टूटे हुए पाइप का आखिरी और स्थायी समाधान था।
बिल्कुल, भौतिक आजादी यानी बेबीलोन की कैद तो बस एक परछाई थी, असली कैद हमारे अपने भीतर थी।
और उस कैद से निकलने का रास्ता हमारी अपनी फ्लैशलाइट या हमारे अपने प्रयासों से नहीं निकलता। ये लेक्चर्स हमें सिखाते हैं कि न्याय और प्रेम दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं।
हाँ, बिना एक दूसरे से समझौता किए।
आज की इस चर्चा ने यशाया के इन अध्यायों को किसी पुरानी किताब से निकालकर सीधे हमारे आज के सवालों से जोड़ दिया है।
ये हमें याद दिलाता है कि भले ही आज हम बेबीलोन में नहीं हैं, लेकिन सर्वाइवल एंग्जाइटी आज भी वैसी ही है। आज भी हम सोचते हैं कि अगर हमने खुद अपनी दुनिया को कंट्रोल नहीं किया तो हम मिट जाएंगे।
एकदम सही बात है। और इसी गहन विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे ये स्रोत एक भौतिक समस्या से शुरू होकर इंसान के हृदय के सबसे गहरे सत्य तक पहुंचता है।
एक बहुत ही शानदार सफर रहा ये।
बिल्कुल, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हम यहाँ छोड़ना चाहते हैं। आज की इस आजाद और आधुनिक दुनिया में, जहाँ हम पूरे गर्व से सोचते हैं कि हमने अपने सारे बाहरी बेबीलोन यानी अपनी सारी बाहरी समस्याओं पर जीत हासिल कर ली है, क्या ऐसा तो नहीं कि इसी जीत के अहंकार में हम लगातार अपनी खुद की आग, अपनी स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट जलाकर अपने भीतर मौजूद सबसे गहरे अंधेरे को अनदेखा कर रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है।
हाँ, और अगर ऐसा है तो आज हमारे हाथों में वो कौन सा प्याला है जिसे हम अपनी जिद में खुद पीने पर आमादा हैं? वो कौन सा बोझ है जिसे शायद हमें अब छोड़ देने की, किसी और के हाथों में सौंप देने की जरूरत है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।